Hare Krishna. This class on Introduction to Jaipur Yatra, given while traveling on 1st April 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
हरि नाम संकीर्तन क्या है और इसका आनंद हम नहीं उठा पाते। इस संसार में आपके समान दयालु और कोई भी नहीं है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु दयालु है। हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है। तो आप लोग पतित हैं या उच्च हैं?
पतित हैं।
पक्का?
100%।
तो ये पता चलेगा जब आपको रूम में कंफर्टेबल नहीं मिलेगा तो कौन अपने को पतित मानता है। जब सीट नहीं मिलेगी तो कौन अपने को पतित मानता है।
जो पतित है वो पतित मानता है, जो पतित नहीं है वो तो खड़ा हो जाएगा।
हाँ, इसलिए हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु, तो भगवान का नाम है पतित पावन। तो भगवान उन्हीं को पावन करते हैं जो अपने को कौन समझते हैं, जो अपने को उच्च समझते हैं। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान उनके लिए नहीं आते हैं। हमसे कल कोई पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि भगवान क्यों नहीं आते हैं हर एक व्यक्ति के पुकारने पे। तो मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने कहा कि जब आपका बच्चा आपको पुकारता है तो आप तुरंत जाते हैं, लेकिन जब रास्ते में रेड लाइट पर बहुत सारे भिखारी मिलते हैं और वो आपके दरवाजे पे नॉक करते हैं तो आप उनको बात नहीं करते, उनको बिठाते नहीं है, उनसे बात नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? तो आप बच्चे के लिए क्यों जाते हैं? कह रहे क्योंकि वो हमें बुला रहा होता है। और जो नॉक करते हैं उनको क्यों नहीं जवाब देते? कह रहे क्योंकि वो हमें नहीं, हमारी चीजों को बुला रहे होते हैं, हमसे कुछ मांग रहे होते हैं। तो ऐसे भगवान तब तक नहीं आता जब तक हम चीजों को मांगते हैं। वो कहते चीजें ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन जो लोग भगवान को चाहते हैं, चीजों को नहीं चाहते हैं, उनके लिए भगवान आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम जिस स्थान में जा रहे हैं, जयपुर, यहाँ पर भगवान साक्षात भक्तों के साथ में वार्तालाप करते हैं। अनेकों लीलाएं हम चर्चा करेंगे, कैसे भगवान भक्तों के साथ साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। भगवान जो है अब भक्तों की इच्छा से वृंदावन को त्याग करके जयपुर में आ जाते हैं और जयपुर को गुप्त वृंदावन बना देते हैं। तो जयपुर का एक नाम है गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक छुपा हुआ अवतार है, छन्न अवतार है, वैसे ही जयपुर भी एक छुपा हुआ वृंदावन है ना। तो हम जयपुर में ना तो बापू बाजार में शॉपिंग करने जा रहे हैं, ना हम आमेरगढ़ में फोटो खिंचाने जा रहे हैं,
लेकिन
ना हवा महल में हवा खाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। तो लेकिन हम जयपुर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो भक्त हैं राजा जय सिंह, उनकी इच्छा मात्र से सारे वृंदावन की जो ओरिजिनल विग्रह है, ओरिजिनल जो साक्षात विग्रह है जिन्हें भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किया था, वो सारे आज जयपुर में विराजमान है राजाओं के घर के अंदर। तो हमें दिव्य वृंदावन देखने का मौका मिलेगा। हम वृंदावन जाते हैं लेकिन वहां पर वो स्थान भगवान का है लेकिन वहां भगवान के विग्रह नहीं है। तो भगवान के जो विग्रह है जिन्हें गोस्वामी ने जिनकी अर्चना पूजा करी, वो सारे इस समय जयपुर में विराजमान है। तो जयपुर में, करौली में, श्रीनाथ जी में, तो अलग अलग जगह पर अलग विग्रह हैं। लेकिन इटसेल्फ जयपुर, जयपुर के अंदर मैं काउंट कर रहा था तकरीबन 9 विग्रह भगवान के हैं जो कि लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसे 9 विग्रह के हम दर्शन कर पाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब अपने को पतित मानते हुए भगवान के दर्शन करें। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है साक्षात बलराम है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करते हैं? गौरांग देव के प्रेम आनंद में मत रहते हैं। सदा क्या बोलते रहते हैं? क्या बोलते हैं?
गौरांगा।
बाकी सारे भक्तों के लिए गौरांग नहीं है, सिर्फ आगे वालों के लिए। रूप गोस्वामी जो जयपुर के अधिष्ठात्री आचार्य हैं, जयपुर राज्य के, क्योंकि उनके विग्रह गोविंद देव वहाँ विराजमान है, वो कहते हैं अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, उसमें वो कहते हैं उत्साहात निश्चात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात, है ना। तो उसने तीन चीजें मुख्य बताई है, क्या है? उत्साहात, निश्चात और धैर्यात। पहली चीज क्या है? तो अगर आप लोगों में उत्साह नहीं होगा, अरे प्रभु जी हमारा तो मन नहीं था, हमारे पति ने पैसे दिलवा दिए, बोले अब तो 3,000 खर्चा किया, चलना पड़ेगा, तो फिर भगवान के दर्शन शायद ही हो पाएंगे आपको। घूमेंगे तो, लेकिन दर्शन नहीं होंगे। और या फिर किसी पड़ोसी ने आपके पैसे लगवा दिए, बोले जी हम जा रहे हैं, आप ही चलिए, या फिर जोश जोश में हमने भर दिया, बाद में बड़ा लग रहा है कि कैसे हम भगवान का दर्शन करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति गौरांग गौरांग बोलेगा, उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम आनंद रहेगा। जहाँ गौरांग है वहां नित्यानंद है, और नित्यानंद का मतलब है नित्य आनंद। आनंद कभी समाप्त नहीं होता, सदा चलता रहता है, नित्य आनंद। तो जो लोग गौरांग गौरांग बोलते हैं उनका हमेशा नित्य आनंद चलता है। और जितनी कृपा आपको 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से मिलती है, उतनी एक बार गौरांग करने से मिल जाती है। पता आपको एक बार गौरांग बोलेंगे, अगर आप प्रेम गौरांग
ये बात बोलेंगे तो,
लेकिन
बोलेंगे एक बार
तो बोलेंगे, हम तो 16 माला नहीं जप कर सकते हैं, लेकिन हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनकी इच्छा रूप कार्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हम सब विधि पूर्वक नियम पूर्वक भगवान के नामों का जप करें, संख्या पूर्वक। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने, संख्या पूर्वक जप करी, संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। इवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण, फिर भी वो काउंट करके जपा करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करते कि मन मन में चल रहा है जी, मन मन में चल रहा है। तो भगवान होकर भी वो आपको सिखाने आ रहे हैं कि अपने आचरण से सिखाते हैं कि किस तरह से भक्त को अपना जीवन गुजारना चाहिए, सदा कृष्ण भावना भवित होकर। तो कृपा करके नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो भक्त दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? हाँ जी,
हर वक्त सुखी होते हैं,
भक्त हर वक्त सुखी होते हैं। तो दुखी क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि वो दूसरों को देख करके दुखी होते हैं कि जो लोग जप नहीं करते हैं, जो लोग सोते रहते हैं, जब बोला जाता है गौरांगा बोलो तो उनके मुंह से आवाज ही निकलती, ऐसे लोगों को देखकर दुखी होते हैं। उसमें दुखी नहीं होते हैं कि मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अरे 9 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता था घर में, अभी तो यात्रा में क्या आया, फंस गया मैं तो, 10 बज गए प्रसाद नहीं मिला, पानी की बोतल बोले घर से लेके आओ, बड़ा अजीब सा प्रोग्राम है, पैसे भी पूरे ले लिए, फोन कर करके ले लिए, प्रसादम भी बनवा लिया, पता नहीं पैसे का क्या करेंगे, ये लगता है कोई प्रॉफिट कमाने का अपना सोचा है इन लोगों ने, ढाबा खोल लेंगे। तो उस तरह से उसने दुखी नहीं होता भक्त। हे अद्वैत आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताय के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदा शिव का अवतार है, इसलिए जब भी हम किसी भी धाम में प्रवेश करते हैं, तो अभी डॉक्टर सौरभ प्रभु चर्चा कर रहे थे, हर जगह द्वारपाल होते हैं वहाँ के शिव जी, चाहे आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो लिंगराज वहाँ भगवान भुवनेश्वर में विराजमान है, अगर आप गिरिराज गोवर्धन में जाएंगे तो वहाँ पर वनखंडी महादेव विराजमान है, अगर हम वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ चकलेश्वर महादेव और गोपेश्वर महादेव विराजमान है, अगर हम मथुरा जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव विराजमान है, और अभी हम जयपुर जाएंगे तो तारकेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है। तो इस तरह से शिव हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हीं को और सिर्फ भगवान का दर्शन देते हैं जो लोग भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं। भाई जब तक आप शर्ट खरीदना नहीं चाहते तो कोई शर्ट आपके घर आके देगा? बोले धोती कुर्ता प्रभु जी घर आके दे गए, हम तो लेना नहीं चाहते थे। जब धोती कुर्ता जैसी तुच्छ वस्तु जो 400-500 रुपए में आती है वो कोई जबरदस्ती नहीं देता, तो भगवान का दिव्य दर्शन कैसे बिना इच्छा के प्राप्त होगा? कितनी बार भी आए जाए हमें दर्शन नहीं होगा, उसके लिए अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु सदाशिव है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हम पर कृपा करें, हमें दिव्य वृंदावन का, दिव्य जयपुर का दर्शन हो, और हमसे जो अपराध हो उसके लिए क्षमा याचना करें, क्योंकि शिवजी कौन है? परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथाम शिव। तो वैष्णव वैष्णव है शिवजी ना, अब शिवजी चाहे तो किसी को एंट्री दे सकते हैं, चाहे तो किसी को एग्जिट कर सकते हैं। तो किसी भी वैष्णव अपराध से बचते हुए हमको भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें ट्रिप में आएंगे तो कई बार ओवर एग्जर्शन हो जाता है, अरे ट्रिप में बैठे बैठे सो नहीं पाए, 3 बजे के उठे हुए हैं, फिर कल करौली जाना है, फिर परसों दिल्ली वापस जाना है, तो ऐसे में हम एक दूसरे के प्रति कई बार है ना अपराध कर बैठते हैं। जैसे मेरी सीट प्रभु जी, मैं 5वें नंबर सीट पर बैठ के आया था तो 5वें पे जाऊंगा, तो इस तरह के कई बार अपराध हो जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? पतित, आपने बोला हम सब पतित हैं, तो पतित तो आदमी तो नीचे बैठा दो तो भी खुश है, ऊपर बैठा दो तो भी खुश है, ऐसी भावना होनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे नहीं आपके साथ, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए। अद्वैत आचार्य वो है जिनकी इच्छा से स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो अद्वैताचार्य रोज शालिग्राम शिलाओं के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करते थे, जैसे हमारे सुमित प्रभु अभी आजकल शालिग्राम शिलाओं की सेवा कर रहे हैं। तो शालिग्राम शिला की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य की इच्छाओं के अनुरूप मायापुर धाम में प्रकट हुए। तो अब यहाँ पर उन्होंने काफी सारे गोस्वामी के नाम लिए हैं। हाँ हाँ स्वरूप, तो स्वरूप कौन है? स्वरूप दामोदर। कौन थे स्वरूप दामोदर? हाँ, सेक्रेटरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और साथ में जीव गोस्वामी जो थे, जिनके विग्रह है राधा दामोदर, उनके शिक्षा गुरु भी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के भी शिक्षा गुरु थे। तो काफी सारे लोगों को स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या किया है, शिक्षाएं प्रदान की है। सनातन, सनातन कौन है? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के विग्रह है राधा मदन मोहन, जो कि करौली में है, जिसमें हम कल दर्शन करने जाएंगे। रूप गोस्वामी, जिनके विग्रह है राधा गोविंद देव, जो भी अभी जयपुर में है, हम जाएंगे दर्शन करने दो दिन बाद परसों। रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके विग्रह है राधा गिरधारी, वो भी जयपुर में है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है ये वृंदावन में इनके विग्रह है, यहाँ पर नहीं है। और है साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे, उनके बारे में सौरभ प्रभु पूछ रहे थे, तो उनके विग्रह है राधा रमन। राधा रमन विग्रह उनको कैसे प्राप्त हुए? तो उन्होंने बताया, अभी सारे वृंदावन से विग्रह चलकर जयपुर आ गए हैं, सिर्फ एक विग्रह है राधा रमन, जो कि अभी ओरिजिनली विराजमान है कहाँ? वृंदावन। तो राधा रमन के दर्शन करने से हमें तीन विग्रहों के दर्शन की कृपा मिलती है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ। और ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जो राधा मदन मोहन है, उनके चरण साक्षात कृष्ण के चरण जैसे हैं, और राधा गोविंद देव जो है, उनका जो वक्ष स्थल और बांसुरी है वो बिल्कुल वैसी है जैसे ओरिजिनल कृष्ण के हैं, राधा गोविंद देव। तो जब गोविंद देव जी को देखें तो उनका मिडिल पार्ट हमें ध्यान से देखना चाहिए, कृष्ण एडिटिन वैसे है साक्षात। और जो भगवान का मुखारविंद है वो राधा गोपीनाथ, वो एज इट इज है जैसे कृष्णा है। और ये तीनों चीजें राधा रमन में है, उनका फेस गोपीनाथ जैसा है, उनका मिडल गोविंद देव जैसा है, और उनका उनके जो पांव का स्थान है, उनके चरणारविंद, वो है राधा मदन मोहन जैसा। तो ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुए विग्रह कैसे हुए, वो एक बार गंडकी नदी में गए थे स्नान करने के लिए नेपाल में। तो वो जब स्नान कर गए थे तो उनके हाथ में शालिग्राम शिला आ गई। एक शिला आई तो उन्होंने फेंक दिया, फिर दोबारा आई तो फिर फेंक दिया, फिर बार बार जब आचमन करते थे तो हाथ में उनके विग्रह और शालिग्राम शिला आ जाते थे। शालिग्राम शिला और गोवर्धन शिला, इन दोनों को साक्षात इसमें भगवान प्रकट है, उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तो जब उनको 12 शालिग्राम शिला प्राप्त हुए तो अब उन्होंने सोचा लगता है भगवान की इच्छा है, और फिर उन्होंने 12 के 12 शालिग्राम शिला लेकर वृंदावन आ गए। तो एक दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक दिल्ली के व्यापारी थे जो वृंदावन गए और सभी विग्रहों को, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और सबको वस्त्र प्रदान कर रहे थे, और ड्रेस, जैसे अभी हमारे मंदिर में भी सब लोग रुक्मणी द्वारकाधीश की डीटी ड्रेसिंग के लिए ड्रेसेस सिल रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं। तो जब उस व्यापारी ने भगवान के वस्त्र दिए तो बड़े परेशान हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी कि मेरे पास तो भगवान ही नहीं है, मेरे पास तो शालिग्राम है, इनके ना हाथ है, ना इनके पांव है, ना इनका मुख है, मैं कहाँ पहनाऊंगा वस्त्र। और ऐसा वर्णन है कि पूरी रात वो रोते रहे, पूरी रात, और रोते 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 नरसिंह चतुर्दशी में वो अपने शालिग्राम शिलाओं का अभिषेक करते रहे अपने आंसुओं से। मतलब ये कोई नकली आंसू नहीं है कि बिस्लेरी बॉटल लगा के आ गए या फिर ग्लिसरीन लगा के, उनको विरह भावना लग रही थी। तो जिनको कृष्ण से विरह होगा उनको जयपुर में साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, है ना। तो इस तरह से विरह भावना वाले भक्त जो है, विप्रलंब भाव वाले भक्त है, उनके लिए जयपुर स्थान बहुत ही आध्यात्मिक है। तो ऐसा नहीं कि हमने प्लान किया और हम आ गए, हमारे से पहले श्रील प्रभुपाद जी जयपुर आए हैं, हिजोलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जयपुर आए हैं, हिजोलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जयपुर आए हैं, हिजोलीनेस भक्ति सुबक स्वामी महाराज जयपुर आए हैं, और गिरिराज स्वामी महाराज जयपुर आए हैं, सचिदानंद महाराज जयपुर आए हैं, और ये सारे अपने अपनी ट्रिप्स लेकर आते हैं। इतने सारे महाराज आने का कारण, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो जीबीसी है जयपुर के, तो वो तो आते ही है, तो इस तरह से सभी महाराज लोग वहाँ आते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्थान दिव्य है, इसीलिए सारे आचार्य वहाँ जाते हैं। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे पूरी रात्रि अपने आंसुओं से अभिषेक करते रहे, और सुबह उन्होंने देखा पूर्णमासी के दिन कि उनका जो शालिग्राम शिला है उसमें से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कितने बड़े साइज के, जितने बड़े साइज के उनके डीटी ड्रेसेस थे, जितने बड़े उनके वस्त्र थे, उतने बड़े साइज के राधा रमण देव प्रकट हो गए। श्री राधा रमण देव की, तो आज भी राधा रमण देव की जो पीठ है बैक पार्ट, उसके ऊपर शालिग्राम शिला का अर्ध शिला विराजमान है। और कई जो जांच करता है लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने चेकिंग किया कि कहीं ये कार्विंग्स तो नहीं करी गई है सिर्फ झूठी कथाएं बनाने के लिए, दंत कथाएं तो नहीं है, लेकिन बाद में वो देख नहीं पाए कि कार्विंग्स में इस तरह से भगवान की डीटीज कभी नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जरूर जो है वो दिव्य मूर्ति है। तो ऐसी मूर्ति राधा रमन देव की विराजमान है वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की। तो जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो सारे डीटीज तो बड़े बड़े थे, तो सब वृंदावन से जयपुर आ गए, लेकिन राधा रमन देव क्योंकि छोटे से घर में थे, तो औरंगजेब के सैनिकों ने सोचा ये कोई घर है, इसलिए उसको छोड़कर चले गए। और राधा रमन देव आज भी इतने वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, 500 साल हो चुके हैं उसके बाद भी आज भी वृंदावन में नित्य दर्शन देते हैं भक्तों को। तो राधा रमन देव इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। और लोकनाथ, तो लोकनाथ गोस्वामी जो है ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना विलक्षण आचार्य हुए हैं हमारे संप्रदाय में, और इनके बेटी है राधा विनोदी लाल, या फिर राधा विनोद भी बोलते हैं, तो जयपुर में विराजमान है। वैसे तो वृंदावन में एक मंदिर है राधा गोकुलानंद मंदिर, उस मंदिर में भी इनके प्रतिभू मूर्तियां हैं, लेकिन ओरिजिनल मूर्तियां जयपुर में मिल रही है। तो विनोदी लाल जब देखेंगे तो आपको देखने लगेगा अरे ये तो राधा रमन जैसे हैं, बिल्कुल राधा रमन जैसा उनका रूप है, रूप रंग है रेखा वैसी है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटे से विग्रह हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर आकर्षक, और उनकी अनेकों लीलाएं, वो कैसे जयपुर तक आए वो हम जयपुर में चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी बस जो आधी बस है उनको फिर नहीं मिल पाएगी। श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु थे उनका क्या नाम है, लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य है नरोत्तम दास ठाकुर, और वो लिख रहे हैं कि मुझे प्रार्थना है आपसे करता हूँ श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भी रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। तो जो रामचंद्र कविराज है इनका पूरा नाम है रामचंद्र चक्रवर्ती। तो रामचंद्र तीन हुए हैं हमारे इसमें, रामचंद्र खां हुए हैं जो कि विलन थे, फिर एक हुए हैं रामचंद्र भगवान जो कि साक्षात भगवान है, और एक है रामचंद्र चक्रवर्ती जो कि कवि हुए हैं, मतलब जिन्होंने काफी किताबें पुस्तक और शास्त्र लिखे। तो ये गौतम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे रामचंद्र चक्रवर्ती का संग प्राप्त हो। और आज श्रीनिवास ठाकुर का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस डे है, तो श्रीनिवास ठाकुर जो है वो साक्षात कौन है, नारद मुनि। तो नारद मुनि है, जीव तत्व है, तो नारद मुनि का कार्य है इधर से उधर कथा कीर्तन करना, घूम घूम के प्रचार कार्य, प्रचार करना। तो ऐसे जो नारद मुनि है वो श्रीनिवास ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला करने के लिए आते हैं। तो ऐसे नारद मुनि से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वृंदावन धाम जो कि जयपुर में छुपा हुआ है गुप्त वृंदावन, उसमें हमें वृंदावन धाम के दर्शन हो सके। क्योंकि एक बार नारद मुनि जो वृंदावन में दर्शन करने के लिए आए, जैसे पता चला ब्रह्मा जी ने बोला गोपाल जी ने, ठाकुर जी ने जन्म लिया है वृंदावन में, साक्षात भगवान वृंदावन में लीला करने के लिए आए, तो सभी देखने के लिए आए, देवी देवता शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, सूर्य देव भी आए, चंद्र देव भी आए, वरुण देव भी आए। तो इस तरह से नारद जी ने सोचा मैं भी जाता हूँ दर्शन करने के लिए कि मेरे नारायण गोपाल रूप में कैसे लगते हैं। तो जब वो वृंदावन आए तो जो नारद मुनि है वो तो उच्च कोटि के वैष्णव है, तो वो अपने योग बल से सिद्धियों से हवा में विचरण कर सकते हैं, तो वो जब ऊपर थे आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुझे तो गोपाल जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो जब नीचे आए धीरे धीरे, काफी देर हो गए जब कोई दर्शन नहीं हुए, तो कह रहे चलो नीचे जाके देखता हूँ। जब नीचे आए तो देखा एक छोटा सा बालक मोर पंख लगाए बाकी ग्वाल बाल सखाओं के पेट पे चढ़ता है, कभी कोई उसकी पेट पे चढ़ता है, कह रहे ये थोड़ी भगवान हो सकते। और फिर जब उनकी दिव्य लीलाएं देखी तो फिर उनको एहसास हुआ कि हाँ यही भगवान है। तो उन्होंने फिर पूछा कि भगवान मैं जब ऊपर था आकाश में तब मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हुए, और जब मैं नीचे आया तब मुझे फिर आपके दर्शन हुए। तो भगवान ने कहा जो हवा में रहता है उसको मेरा दर्शन
नहीं होता।
भगवान का दर्शन पाने के लिए नीचे उतरना, जिस डेजिग्नेशन में जिस अहंकार में हम रहते हैं उससे नीचे उतरकर पतित भावना पतित पावन होने के बाद ही भगवान का दर्शन हो सकता है। तो हम सब आप एक दूसरे से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब अच्छे से वैष्णव के तरीके से रह सकें। वैष्णव गण को साथ में वृंदावन का दर्शन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जाहि वैष्णव गणे ताहे वृंदावन है। तो वृंदावन प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ कॉन्शियसनेस। तो जैसी चेतना रहेगी वैसा दर्शन होगा। आपको लगेगा ये फालतू कहाँ ले आए हमको जयपुर में, हर जी हमारा तो जयपुर कई बार देखा हुआ है, जल्दी से चलो वो दिखा दो जो नहीं देखा हुआ हमारा। तो ऐसा नहीं है, हम कई बार भी आएंगे तब भी शायद हमें कभी भगवान का दर्शन हो पाए। तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक पवित्र पावन भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें जो है ना विनम्रता पूर्वक इस यात्रा को सफल बनाना चाहिए। और इसकी सफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है, हम जैसा बिहेव करेंगे दूसरों के साथ वैसा फिर हमारे साथ बिहेवियर होगा। ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, जैसा आप चाहते हैं लोग आपके साथ बिहेव करें तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा बिहेव करना चाहिए। और यहाँ पर भक्त कई जगह से आए, कुछ भक्त आश्रय के हैं, जैसे हमने प्लान किया था कि खाली आश्रय के भक्त जाएंगे, लेकिन आश्रय के अलावा भी भक्त हैं। जैसे हमारे एम्स में हम प्रचार करते हैं, एम्स इंस्टीट्यूट में, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, वहां से भी हमारे 3 भक्त आए हैं, योगेश प्रभु, नवीन प्रभु और करण प्रभु। तो उन तीनों के लिए हम हरि बोल करेंगे। हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल। तो एम्स में बड़ा अच्छा योगेश प्रभु जी प्रचार करा रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 150-200 भक्त हर मंगलवार को आते हैं, हर मंगलवार को गीता क्लास होती है। तो वहाँ से भी हम चाहते थे ज्यादा भक्त आए, लेकिन जगह की कमी के कारण ज्यादा भक्त नहीं आ सके। और कुछ लोग हैं जो कि हमारे आश्रम में जुड़े हैं लेकिन आश्रम में आते नहीं है, तो जैसे गौतम प्रकाश प्रभु जी हैं, तो ऐसे बहुत सारे भक्त जो कि यात्रा के कारण आए हैं। तो इन लोगों को यात्रा का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो आश्रम में आते हैं वो तो जानते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो आपको घूमने से ज्यादा इसको इस ट्रिप को स्पिरिचुअल ट्रिप स्पिरिचुअल यात्रा समझना चाहिए। तो यात्रा तो हम लोग वैसे भी करते हैं, हम लोग हैं यात्रा के अंदर ही है कि नहीं है। कौन सी यात्रा है हमारी?
स्पिरिचुअल,
जन्म से मृत्यु की यात्रा है। एक बार जन्म हुआ है और अब मृत्यु हो जाएगी, ये यात्रा है। उस यात्रा के बीच में हम छोटे छोटे आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। तो हम रोज भी यात्रा कर रहे हैं लेकिन उसमें से कभी कभी हम यात्रा करते हैं। तो सोचिए इस यात्रा में आने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की, बैग पैक किए, तिलक रखा, बुक्स रखे, गोपी ड्रेस सोची इसके साथ ये पहनूंगी, प्रभु जी ने सोचा ये धोती कुर्ता मैं वेस्ट नहीं करूंगा, नया वाला चमकदार मैं वही निकालूंगा मंगलवार को दूसरे दिन। तो इस तरह से सब प्लान करते हैं। तो सोचिए जन्म से मृत्यु की जो यात्रा है उसके लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो जन्म से मृत्यु की यात्रा है उसके लिए बहुत प्लानिंग करें। तो उसकी सबसे प्रथम प्लानिंग ये है कि अपनी चेतना को स्वच्छ करें। चेतना को स्वच्छ करने का तरीका बताया गया क्या, भगवान के भक्तों का संग, दूसरा भगवत गीता भागवतम का अध्ययन और श्रवण, तीसरा भगवान के नामों का जप, चौथा भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, और पांचवा भगवान के विग्रह की सेवा करना, भगवान के धाम में वास करना, तुलसी की पूजा करना। तो जो राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन है, ये ऐसे विग्रह हैं जिनकी कथाएं तो हम आज चर्चा करेंगे। इनको देखने मात्र से व्यक्ति के भौतिक संसार की अग्नि ध्वस्त हो जाती है, सिर्फ देखने मात्र से। पर देखने के लिए नेत्र चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि।